ओम शांति। गुड इवनिंग। हमारे बीच आदरणीय गीता दीदी उपस्थित है। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी को वेलकम करेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी को आप सभी जानते ही है, यज्ञ के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका है। दीदी 45 ईयर से भी अधिक वर्षों से यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिजनेस विंग के दीदी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। ऐसे माउंट आबू में रहकर, बाबा के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में रहकर अनेक सेवाएं करने के लिए आप निमित्त है। एक बहुत ही विशेष दीदी वक्ता है और प्रैक्टिकली जो हमने दीदी में देखा है, दीदी का पुरुषार्थ बहुत एक्यूरेट है। हमने भी दीदी को देखकर बहुत कुछ सीखा है और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, दीदी हम सभी यहाँ जो बहनें रहती हैं उनकी बड़ी दीदी है, एक माँ जैसी है। जब भी हमारा मन कुछ भारी होता है, कुछ बात करनी है, हम दीदी के पास चले जाते हैं। ऐसे एक विशेष रूप भी हमने दीदी का यहाँ पर देखा, तो ऐसे विशेष दीदी आज हमारे बीच है। तो दीदी अभी साइलेंस पावर से निर्विघ्न स्थिति इस टॉपिक पर क्लास कराएंगे आदरणीय गीता दीदी।
ओम शांति। सविता बहन का परिचय हुआ कि नहीं? सविता परिचय आप बेसिकली बेंगलोर से हैं और मुझे लगता है शांतिवन में 20 साल से 14 साल से आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं आईटी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आप डिजाइन एंड इनोवेशन, बहुत क्रिएटिव माइंड है और अपने आप पुरुषार्थ करके सेवा में भी आगे बढ़े हैं, पुरुषार्थ में भी आगे बढ़े हैं। युवा अवस्था में होते हुए बहुत सुंदर प्रोग्रेस है। ऐसी बहुत सारी बहनें मधुबन बेहद घर में जो नए नए क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स है, नई टेक्नोलॉजी जहां अप्लाई की जा रही है ना, गॉडलीवुड स्टूडियो है, रेडियो है, ऑडियो वीडियो है, अकाउंट्स है, आईटी है, इन सब क्षेत्रों में काफी बहने हैं। ओम शांति। सभी ठीक है ना? हाँ, क्योंकि चारों ओर कोरोना काल में बहुत सबके सामने परिस्थितियां आई हैं, पर बाबा के बच्चों को तो कौन सा मंत्र बाबा ने सिखाया है, हर हाल में, हर हाल में खुशहाल, ये कला बाबा ने हमें सिखाई है। और फरिश्तों की चाल, कोई भी बात से भारी नहीं होना है, हर परिस्थिति से रास्ता निकालकर आगे बढ़ना है। हर परिस्थिति में अलौकिक कमाई कर लेनी है, इसलिए सबके तन भी ठीक है, हाँ, और मन भी ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला है। और आदरणीय रमेश दीदी ने, अनीता बहन ने हिम्मत करके इस चांस को लिया यज्ञ के आदेश पर, तो ये भी एक आप सबका सहयोग जमा हो गया बाबा के घर में कि समय और परिस्थिति में भी हम बेहद मधुबन यज्ञ के साथ हैं। सावधानी रखनी है, अपने आप को सेफ रखना है, बाकी तो हम सब जानते ही हैं। बाबा ने बहुत आदि मध्य अंत की बातें हमें बताई हुई हैं। शुरू से ही बाबा ने हमें जगा दिया है, मानसिक रूप से तैयार कर दिया है। इसलिए ये जैसे अंत की परीक्षाओं का द्वार इससे खुला है ना? ये एक ऐसी विचित्र बीमारी, अदृश्य बीमारी ने दृश्य जगत को अपने सकंजे में ले लिया है, चुंगल में फंसा दिया है। पर भारतवासियों को है ना, भले ज्ञान में न भी चलते हैं पर भक्ति का भी ज्ञान है, धार्मिक बैकग्राउंड है, इसलिए हर कोई हिम्मत रखते हैं, धीरज रखते हैं, क्योंकि ये सत्य जानते हैं कि जो परिस्थिति आज आई है वो आज नहीं तो कल जाएगी, बदलेगी। मुझे तो लगता है ये उसका अंतिम भोग है, धार्मिक संस्थाओं में घुस गई। इतना मास मधुवन बिल्कुल सेफ, ये इस मास में ही सारी बातें सामने आई हैं। तो इसलिए कुछ न कुछ आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी कुल मिलाकर सब अपने आप को ठीक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। तो परिस्थितियां तो आनी ही है, विघ्न तो आने ही है, निर्विघ्न बनने का लक्ष्य है हम सबका। और बाबा की भी ये सुंदर आश रही है बरसों से। आप सबको जो पुराने इसमें होंगे इनको तो पता है, बाबा की काफी मुरलियां चली कि बाबा का यज्ञ निर्विघ्न हो, हर जोन, सब जोन, हर सेंटर, हर ब्राह्मण निर्विघ्न हो। ये दुनियादारी परिस्थितियों को विघ्न नहीं हम समझते है ना, ये तो कलियुगी समय के दृश्य हैं। विघ्न तो हमारे अपने कर्मिक अकाउंट से आते हैं। ये सब प्रकृति सर्जित या मानव सर्जित जो भी बातें हैं वो परिस्थितियां हैं। अभी हम ज्ञान में आए हैं और ज्ञान में आने के बाद भी नंबरवार पुरुषार्थ, पर इससे पूर्व जन्मों में ज्ञान काल में कुछ ना कुछ हिसाब बने हैं, वो विघ्न व्यक्तिगत रूप से सामने आते। इसलिए इन परिस्थितियों को हम विघ्न नहीं समझते हैं, इसको तो हमें बाबा कहते हैं ना प्रकृति पति बनकर, क्योंकि प्रकृति के हम मालिक हैं, वो हमें फॉलो करती है। हमारे विचार, वाणी, कर्म, व्यवहार को प्रकृति वाइब्रेशंस लेती है, प्रभावित होती है, वो तो हमसे फॉलो होती है। हम प्रकृति के मालिक आत्मा पुरुष। इसलिए बाबा कहते सदा हमारे भी मालिक, मालिक के भी मालिक बाबा, उससे कंबाइंड होकर प्रकृति की परिस्थितियों को पार करना है। तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति तुम पर वार नहीं कर सकेगी, अगर हम निरंतर बाबा से कंबाइंड रहेंगे। है ना, मुरलियां आपने स्टडी की होगी, अव्यक्तवाणियां भी, जिसमें बाबा ने बताया है कि यहां तक पानी आ जाएगा पर आप सेफ रह जाएंगे। हम इस दुनिया के बीच रहते हैं, तो दुनिया की जो भी स्थिति होगी, हालात बनेंगे, उनके बीच हम भी हैं, कुछ ना कुछ सेक हम पर भी आएगा। पर अगर हमने प्रकृति को दुख नहीं दिया है, दोहन नहीं किया है, पशु पंछियों को दुख नहीं दिया है, बल्कि हमने सेवा की, प्यार किया है, शुभ सोचा है, तो हमें सदा उनका सहयोग मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो परमात्मा से प्यार करते हैं वे आत्माओं से भी प्यार करेंगे, प्रकृति से भी प्यार करेंगे, क्योंकि परमात्मा के प्यार से प्रेम स्वरूप बनी हुई आत्मा किसी की भी नफरत नहीं करती। उस शुभ शक्तिशाली स्थिति में हम स्मृति स्वरूप बने रहेंगे। तो बाबा कहते ना, बाबा टच करेगा और सेफ कर लेगा। इसलिए क्यों हम तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उस कैचिंग और टचिंग के लिए ही क्लीन माइंड चाहिए, क्लियर इंटेलेक्ट चाहिए, बुद्धि बिल्कुल बाबा को वफादार चाहिए, क्लियर इंटेलेक्ट और कोई बुद्धि में नहीं। और स्वच्छ मन तो कैच कर सकते हैं। इसलिए अंत का समय है, महापरिवर्तन का समय है, ये कॉमन चेंज नहीं है। कॉमन चेंज तो हर क्षण होता रहता है। बाबा कहते हैं ना, ये कोई वर्ष बदल नहीं रहे हैं, युग बदल नहीं रहे हैं, ये तो कल्प बदल रहा है, ये महापरिवर्तन की वेला है। और टोटल एंड की वेला, तो बातें तो जो आ सकती है वो आएगी, है ना। मैक्सिमम विपरीत परिस्थितियां जो हो सकती है वो होनी है, क्योंकि अति पर जाकर फिर हर चीज अंत होते हैं, इसलिए क्लाइमैक्स पर जाएगा ये। डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, साक्षी बनना है। आज भी बाबा ने कहा ना कि उनको खेल लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। और शुभ भावना, तो बाबा ने बहुत लंबे समय से हमें अंत की अंतिम परिस्थितियों की विनाश की बातें बाबा ने कही है। और ये भाई बहने कई बार सोचते थे कि बाबा कहते हैं पर होता कुछ नहीं, ऐसे हम समझते, पर आज समझ में आ रहा है कि इतने लंबे काल से बात कर 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 के बाबा ने मानसिक रूप से हमें तैयार कर दिया। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति आती है, हम बच्चों की बुद्धि में उसी क्षण क्या आता है कि ये बाबा ने कहा है, हमें पता है, हमें बाबा ने बताया है ये सब होना है। आश्चर्य नहीं लगता, प्रश्न नहीं है ये क्या हो रहा है, नहीं पता है बाबा ने कहा है ये होना है। तो 50% तो हम अचल ही रहते हैं कि पता है ना। नोन बातें आएगी तो शौक नहीं लगता है, जानते हैं। अचानक होता है तो आश्चर्य, हम जानते हैं पहले से। तो ये हमें इतना प्रभावित नहीं कर सकता। और ये अंदर जो ज्ञान भरा है तो अलर्ट हो जाते है ना, थोड़े भी अलबेले हैं, आलस कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य है, इसलिए जानते हैं कि विघ्न आएंगे, विघ्न आए ही नहीं वो निर्विघ्न नहीं है, वो आएंगे ही, पर मुझे विघ्न की प्रभाव ना हो, असर ना हो, मेरी स्थिति डामाडोल ना हो तो निर्विघ्न रहे, मेरे पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना आवे। इवन हम बाबा के बच्चों में भी, अब चूंकि बेहद का संगठन बन गया है तो नंबरवार है सारे, और नंबर वार बीकेस के भी तो कितने पेपर आते हैं। उनके भी तो खेल हम देखते हैं ना। पर बाबा ने शुरू से हमें कहा है कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। कुछ भी यज्ञ का बुरा हो नहीं सकता है, ये भगवान का रचा यज्ञ है। अच्छे अच्छे आएंगे और जाएंगे, पर बाबा कहते यज्ञ अमर है, अमर रहेगा, अखंड है, चलता रहेगा। ये बाबा ने कहा है। बड़ी दीदी दादी ने जब शरीर छोड़ा तब बाबा बोले, क्योंकि भगवान का रचा हुआ यज्ञ, ये मेरे और आपका यज्ञ रचा हुआ नहीं है। हम तो भगवान के साथी है, सहयोगी है, मददगार है। ये उनका यज्ञ है। सत्य प्रत्यक्ष होना ही है, कोई बदनामी की बात नहीं। हाँ, मुझे ये लक्ष्य रखना है कि मैं बदनामी का कारण ना बनूं। तो मेरा हिसाब माइनस होगा, यज्ञ को कोई हानि नहीं पहुंची। आत्माओं का कल्याण करने हम निमित्त बन जाएंगे, हमारा हिसाब बनेगा, पर यज्ञ का कोई बाल बांका कर नहीं सकता। मुझे विघ्न का बीज नहीं बनना है, कुछ भी हो। मुझे याद है मनोहर दादी मुझे कहती थी ज्ञान सरोवर में, इतने बड़े संगठन को संभालने में कुछ ना कुछ बातें तो आती हैं। हम ये हो जाते थे कि यहां आकर ऐसा क्यों करते, यज्ञ में रहकर ऐसा क्यों करते हैं। दादी कहती है गीता शुरू से विघ्न आते रहे, पर ये बाबा का यज्ञ है, यहां पवित्र आत्मा ठहर नहीं सकेगी, उसके कदम अपने आप उखड़ जाएंगे। दादी ऐसे हिम्मत और सत्य समझाते थे हम। हमें जो करना है वो हमने कर दिया हमारी तरफ से, बाकी बाबा जाने, वो आत्मा जाने। इसलिए हमें टोटल संगम युग में जो हम भगवान के सहयोगी बन सकते हैं वो करना, बाकी हर आत्मा अपना हिसाब खुद जाने, बाबा जाने। मुझे मेरा कर्तव्य करना, बड़ी दादी आते थे, दादियां जब भी आती है ना, और कारोबार से भी आते थे ज्ञान सरोवर, जब नया नया बना था कुछ ना कुछ तो बनता जाता, तब आते रहते। तो ज्यादा क्लास नहीं करा सकते, सबसे मिल नहीं सकते, तो कम से कम टोली देते थे सबको। अनाउंस होता था अभी सब आ जाओ कॉटेज में, दादी सबको टोली देंगे, मेजोरिटी आ जाते थे, कुछ नहीं आते थे। हम दो तीन बार अनाउंस करते थे फिर भी नहीं आते थे, कई बार कहीं हर बार नहीं आएंगे। दादी सबको देख के, जो टोली बचेगी देख के जाती थी, कहती थी जो नहीं आए हैं पीछे उनको दे देना। मैं कहती थी देखो दादी मैं दो तीन बार अनाउंस करती हूँ तो भी आते नहीं है तो क्यों दूँ? तो दादी कहती थी कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमारा काम पालना देना है, हमें पालना देनी है सबको, अपना हिसाब हो जाए। तो ऐसे ऐसे दादियों के संग में ये बातें सीखते गए। जो दादी जानकी जी अंत में सदा हम सबको सिखाते रहे, मैं कौन मेरा कौन। तो ये दो रियलाइजेशन जितनी गहरी होगी तो तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे क्या करना है, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं रही, अपने आप क्लैरिटी हो जाती है मुझे क्या करना है। मैं कौन हूं सोच, और मेरा कौन है, अब मैं किसकी बन गई, उस हिसाब से मुझे क्या करना है क्लियर आ जाएगा। आप रिएक्टिव नहीं बन सकेगी, अपने आप पॉजिटिव ही बनते जाएंगे। इसलिए बातें आए परिस्थितियां आए पर हम नेगेटिव प्रभाव में न आए और हम विघ्न का कारण न बने। तो स्थिति निर्विघ्न रखना सहज है, यज्ञ को ब्राह्मण परिवार को संगठन को सेंटर को निर्विघ्न बनाना सहज है। हम यहाँ किस लिए आए, श्रीमत पर चलने के लिए आए। जो भगवान ने नियम मर्यादाएं सिखाई हैं वो जीवन में लाने के लिए हम यहाँ। जो भगवान का कार्य चल रहा है उसमें जितना साथ सहयोग दे सकते हैं, जितना उसमें अच्छा और कर सकते हैं उसके लिए हम आए बस, बाकी और बात हमारी नहीं। तो कितना भी बड़ा संगठन बन जाएगा आप कभी बहक नहीं जाएंगे, मिसगाइड नहीं हो जाएंगे। कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकेगा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियां बड़ी दीदियां बस हम मेन स्ट्रीम को पकड़ के चलते रहे, मुख्य धारा में चलना है, गलियों में उलझना नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना, निर्विघ्न स्थिति, लगातार रहेगी तो अपनी स्थिति की शक्ति का अनुभव हो। बनते बिगड़ते, बनते बिगड़ते तो पावर नहीं लगेगा। बाबा ने कहा ना, एक रस फिर बन सकते। और अंत तक ऐसे एक रस निरंतर चलते रहेंगे तो जरूर बाबा की मदद से हम अपने आप को संपूर्ण बना सकेंगे। आज बाबा ने कहा ना, अंत में कर्मातीत्व नहीं, कहीं भी नजर न जाए, किसी में भी बुद्धि न डूबे, हम इतना अपने आप को भर सकेंगे, भरपूर होके जाएंगे। बाबा के साथ जाएंगे माना उनकी याद में चले जाएंगे। तो ये है अंदरूनी स्थिति की शक्ति को ही साइलेंस पावर कहते हैं। बाबा अक्सर मुरली में भी कहते साइंस एंड साइलेंस। साइंस माना प्रकृति की शक्ति, ये भौतिक जगत, प्रकृति का जगत, विज्ञान उसकी अति में जाता है ना, किन सिद्धांतों पर ये चल रहा है। विज्ञान प्रकृति का गहरा ज्ञान देता है। प्रकृति के उन सिद्धांतों के आधार पर फिर टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है और उन टेक्नोलॉजीज के आधार पर फिर साधन और सुविधाएं बनती है। ये साइंस पावर है। और देखो अद्भुत साधन दिए है ना विज्ञान ने। पूरे ये 6 मास ऑनलाइन ही तो सारी पालनाएं हुई है। बहुत क्लासेस यहां बैठे सेवा कर रहे कर सके हम लोग। आने जाने में तो हम 8-10 स्थानों पर जाते थे। पर यहां बैठे 6 मास में कितने स्थानों पर ऑनलाइन क्लासेस चले, ये विज्ञान की विधि। अभी तो विज्ञान साथ में है, बहुत पालना मिली इन साधनों से, है ना। काफी सेंटरों ने, सब जोन ने, जोन ने ऑनलाइन कनेक्ट करके विविध ऐप द्वारा ऑनलाइन क्लासेस, भट्टियां, वेबिनार्स, हर विंग के सेमिनार चले, तब समझ में आया कि ड्रामा में ये भी क्यों परिस्थिति आई, जो नहीं हो सकती थी वो सारी सेवाएं हुई। और ऑनलाइन प्रोग्राम में कोई कहीं से भी जुड़ता है, भारत का, कनाडा का, चाइना का, बांग्लादेश, कहां कहां से ऑनलाइन लोग जुड़ते थे और सुनते थे। सब हदें खत्म हो गई, बेहद में सेवा हो गई। तो ड्रामा का राज कि भगवान ने अपना काम करा लिया, सैकड़ों भाई बहनों ने ऑनलाइन सेवाएं की, बहुत चली, नयों के भी कोर्स, क्लासेस, शिविर सब चला। ऐसे लगा कि जैसे जहां नहीं पहुंच पाए वहां भी बाबा ने पहुंचे। तो अभी विज्ञान साथ में है, अंत में बाबा ने कहा है कि वो भी फेल हो जाएगा, फिर वायरलेस नहीं, बाबा ने क्या कहा, वॉइसलेस कनेक्शन काम आएगा, शुद्ध बुद्धि कैच करेगी बातें। तो ये विज्ञान की शक्ति, विज्ञान के चमत्कार, कैसे कैसे साधन बन रहे हैं। साइलेंस पावर माना स्पिरिचुअल पावर, रूहानी शक्ति, थॉट पावर, शुद्ध संकल्पों की शक्ति, शुद्ध भावनाओं की शक्ति, शुद्ध स्थिति वृत्ति की शक्ति। ये साइलेंस पावर योग इसलिए तो कर रहे हैं, योग में हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्मृति, वृत्ति, स्थिति को ही शुद्ध कर रहे हैं ना हम। सिंपल बाबा कहते योग बल, योग बल श्रेष्ठ स्मृति की शक्ति, स्थिति की शक्ति। ये भौतिक व्यक्त वाणी की शक्ति, ये वाइब्रेशन की शक्ति। साइलेंस पावर वाइब्रेशंस का पावर। तो लक्ष्य बना कि इसमें तो चलो कला सब में आ गई, ज्ञानदान की कला आ गई, वाणी से ज्ञानदान हम करते हैं, एक दो में भी हिम्मत उमंग उत्साह भरते हैं। पर ये कुछ भी ना बोलकर साइलेंस में रहकर ये सूक्ष्म शक्ति ये साइलेंस पावर बढ़ाना है और ये साइलेंस पावर तब आपका सक्सेसफुल होगा। योग का बल, योग का प्रयोग, योग का दान हम करते हैं ना, ये तब सफल होगा। पहली बात, जिन विघ्नों में हम बीज नहीं होंगे वहां सफल होगा। हम ही विघ्न क्रिएट करें और फिर हम योगदान देने बैठे तो नहीं काम करेगा। फिर हम कहते हैं हम कितना योग देते हैं पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि हमने नेगेटिव हिसाब इतना हार्ड बनाया है कि ये सॉफ्ट पावर, पॉजिटिव पावर, वो हिसाब चुक तो होगा तब कंप्लीट प्रभाव आएगा। तो टाइम लगेगा ना, तुरंत नहीं होगा। हम बरसों से सुभावना रखते आए हैं, कोई असर नहीं होता है। का कारण यही है पढ़ते होंगे ना दुनिया में भी कैसे एक दो को गिराने में हटाने में खुद ही आतंकवादियों को तैयार करते हैं और फिर खुद ही शिकार भी बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग बल वहां काम करेगा ना जहां खुद ने नेगेटिव हिसाब नहीं बनाया। चलो ज्ञान काल में बना वो अलग बात, वहां पर टाइम तो लगेगा ना। इसलिए बहुत बाबा कहते हैं ना, कर्म में आने से पहले सोच समझ के व्यवहार कर। रिएक्टिव बनेंगे तो वो हिस्सा फिर बहुत भारी हो जाता है, विशेष साइकिल बन जाता है। हमको कई बार लगता दादियां अभी भी कायदा नहीं उठाते हैं, अभी भी कायदा नहीं उठाते हैं, अभी भी प्यार से ही चलाते हैं, अभी भी बड़े निमित्त है वो प्यार से ही चला रहे, क्योंकि उनको जानते हैं, गहरा अनुभव है, हिसाब बहुत लंबा और कड़ा बनता है रिएक्ट करने का। सहन करने में चुक तो होता है, और हम अपने को योग अभ्यास से और प्रैक्टिकल हम निमित्त भाव में रहते हैं तो हम अपने आप को भी डिटैच रख सके कि अब मैं बाबा के तरफ से निमित्त। ये आत्मा मेरे साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, वो बाबा से कर रही, क्योंकि मैं निमित्त। तो आप पर असर नहीं आएगा, आप डिटैच रहेंगे, पर वो राइट होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ऐसे नहीं मैं ही डिस्टर्ब करके फिर मैं डिटैच हो जाऊं, नहीं ऐसे नहीं। क्योंकि कई बार हम बहुत जल्दी कॉन्शियस हो जाते हैं ना, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते, अब तो मैं हूं ही नहीं ना, मैं तो बाबा के तरफ से, मैं तो मिट गई ना, मैं तो समा गई ना बाबा में, मैं अपनी दुकान खोल के थोड़ी यहां बैठी हूं, मैं बाबा के तरफ से बैठी। इतना डिटैचमेंट, ट्रस्टीशिप, न्यारापन, ये साइलेंस पावर से। तो ज्ञान से विजडम आता है, डिवाइन सेंस आते हैं, दिव्य विवेक आता है, सद्बुद्धि आती है। विजडम माना सद्बुद्धि। कई ज्ञान सुनते हैं पर विजडम नहीं आता है, क्योंकि भगवान इस ज्ञान के राज द्वारा क्या सबक सिखा रहे हैं वो सीखते ही नहीं है हम। तो वो विजडम का पावर, आचरण में लाते हैं तो वो इनर साइलेंस पावर बनता जाएगा। दिव्य बुद्धि और दिव्य स्थिति की शक्ति, इसलिए साइलेंस पावर के द्वारा निर्विघ्न स्थिति कैसे हमें अपनी बनानी। वो बताते हैं ना कि भी अग्नि के बीच वो प्रह्लाद सेफ रहा, अग्नि में तो डाला गया पर स्मृति की शक्ति से सेफ रहा। तो ये परिस्थितियां अग्नि, उन्होंने स्थूल बता दिया, विघ्नों की अग्नि। इसलिए बाबा कहते लगन की अग्नि के सामने विघ्न टिक नहीं सकेंगे। लगन बाबा 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 बस। सत्य ज्ञान मिल गया, असत्य से वैराग्य आ गया, असत्य का त्याग हो गया, सत्य की साधना हमारी हो गई, चल रही। ये सब स्टेप हमने कवर कर दी। अब लगन, वो ही लगन, बाबा कहते हैं लगन लग गई मगन होना। लगन अग्नि रूप धारण करे मीन्स तपस्या, उसको तपस्या है, वो साइलेंस पावर क्रिएट कर। तो बाबा के बच्चों ने सब स्टेप्स क्रॉस किए हैं, अब लास्ट लगन। अब हिलना नहीं है, मगन होना, अब लास्ट है, ये स्टेप कंप्लीट करना है सबको। लास्ट पॉइंट बड़ा शार्प होता है, पता है ना, टॉप पहाड़ी की टॉप है ना, ऐसे 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 एकदम शार्प पॉइंट पर पहुंचना है। तो डरना नहीं पर मगन हो जाना है, मगन हो जाना है। वो दिन वो समय आ चुका है हम सबके सामने, भगवान को जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया है, अब ये लास्ट प्रिपरेशन का टाइम मिला, नहीं तो हम ब्राह्मण भी बहुत लौकिकता में फंसे हुए थे, सेलिब्रेशंस में फंसे हुए थे, रस्मों रिवाज में हम भी विस्तार में चले गए थे, कंपल्सरी पुरुषार्थ ने सबको ड्रामा ने लगा दी हुआ कि नहीं तो हम भी सेवा है, प्रोग्राम है, आज फलाने हैं, ये है, उन्हीं कारणों में हम भी चले गए थे। अब कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा अब योग के अलावा और कुछ है ही नहीं, करो। पता चल गया हर एक को, अपना रिजल्ट सामने आ गया, आया कि नहीं आया, हाँ, कि हम कितने पानी में हैं, पता चल गया ना। वो शक्ति बनानी है स्थिति लगन की। आज भी बाबा ने कहा ना, क्या होना रहे, बस यही खुद करना है और दूसरों को भी बताना, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर, वही सत्य है। तो बहुत अच्छा मौका है, खुद गहराई में जाएं, महीनता में जाएं, बाबा ने कहा ना, बुद्धि की महीनता और आत्मा का हल्कापन, ये तुम्हारी पर्सनालिटी, सच्चे ब्राह्मण में ये होना चाहिए। ओम शांति। 5 मिनट एक्सरसाइज कराने हैं। खड़े हो जाएंगे सभी साइलेंस में। ये साइलेंस की एक्सरसाइज। पांच संकल्पों को रोज अंडरलाइन करेंगे, रिवाइज करेंगे। पहला अभ्यास मैं शुद्ध और शांत आत्मा। Point of light and might. शरीर मिट्टी है, मैं एक माइट। लाइट माइट धीरे से लेफ्ट राइट साइड घूम जाए। राइट साइड दूसरा अभ्यास रोज करें। बाबा ने अपना बनाकर मुझे डबल लाइट बना दिया। सभी पापों से अवज्ञाओं से गलतियों से मुक्त कर दिया। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और लाइट हल्की हूँ। Easy and light. Right side घूम जाए। तीसरा अभ्यास मैं डबल लाइट फरिश्ता लाइट की ड्रेस में लाइट के वतन में संपूर्ण कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता बाप दादा के समीप सूक्ष्म वतनवासी राइट साइड घूम जाए। चौथा अभ्यास लाइट हाउस माइट हाउस बन वतन से ही विश्व की सेवा करना। मनसा। वाइब्रेशंस फैलाना आत्माओं को, स्नेह शक्ति की सकाश देना। राइट साइड घूम जाए, आखिरकार मुझ पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा को अपने निज धाम ज्योतिर्देश में जाकर परम ज्योति के याद और प्यार में समा जाना है। लवलीन बन जाना है, बैठ जाए। ओम शांति।